नमस्कार, मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बोलते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो गीली मिट्टी की तरह होता है, उसको आप जैसा आकार देना चाहे दे सकते हैं, और ये आकार देने का काम एक टीचर का बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन आप ही सोचिए, अगर टीचर को ये कला नहीं मालूम हो ठीक से, तो फिर वो बच्चा कैसे बनेगा। और इसी को सीखने के लिए आज हमारे पास कुछ टीचर्स आके पहुंचे हैं, जिनको बच्चों को अच्छा बनाने का मन है और ये कला सीखना भी चाहते हैं। और ये कला सिखाने के लिए हमारे पास आज उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी, जो कि पिछले 50 सालों से कितने लोगों का सही मार्गदर्शन किया है उसका हिसाब करना भी मुश्किल है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी नमस्कार, और आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक टीचर का, जैसे एक बच्चा होता है उसको बनाने वाला, जैसे माँ बाप का कुछ रोल होता है, वैसे टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक अच्छा टीचर किसको बोलते हैं, क्या क्या गुण होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा स्वस्थ बच्चा को अच्छा इंसान बना सके।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले स्वयं परम शिक्षक परम पिता परमात्मा है, इसीलिए इसको विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है कि विश्व भर के लिए आध्यात्मिक पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और परमात्मा को हम सत शिक्षक भी कहते हैं, सत बाप भी कहते हैं, सत माँ भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। तो ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उसके आधार से शिक्षक के पास विशेष गुण होने चाहिए, परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो शिक्षक के आधार बचपन से पहले होते हैं माता पिता। उनकी ड्यूटी होती है, जैसे आपने भी बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो मिट्टी के समान होता है, गीली मिट्टी के समान, तो उसको कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन माता पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहे वो बना सकती हैं, वो उनका प्रथम गुरु होता है। फिर माता पिता उसको स्कूल में भर्ती करते हैं, स्कूल में वो अपने संगी साथियों के साथ आता है, तो उसके पास फिर औरों का थोड़ा प्रभाव होता है। फिर वो कॉलेज में जाने के लायक हो जाता है, तो माँ बाप को थोड़ी चिंता होती है कि ये किसी संगदोष में ना आ जाए।
जैसे छोटा बच्चा स्कूल में गया, हाँ, 3-4 साल का हुआ, उससे लेके कॉलेज जाने तक का जो पीरियड होता है वो टीचर जो है एक बच्चा को बहुत, उनका प्रभाव बहुत पड़ता है, तो वो कैसे टीचर होना चाहिए?
वो टीचर को बच्चों के प्रति बहुत सबसे पहले प्यार होना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि ये मेरा ही एक परिवार का बच्चा है। अगर वो सोचेगा ये दूसरे का बच्चा है तो उसके शिक्षा देने में भेदभाव आ जाएगा। दूसरा, उसके पास बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए, एक अपने अंदर भी विश्वास हो, एक स्टूडेंट के अंदर भी विश्वास हो, और दूसरा परमपिता परमात्मा में भी अपना भी विश्वास हो और उसका भी विश्वास दिलाए। तीसरी बात, उसके अंदर नम्रता होनी चाहिए। जैसे बचपन में बच्चे कुछ उद्यमता करते हैं, माँ बाप के कान पकड़ते हैं, सिर पर चढ़ते हैं, तो माँ बाप सब सहन कर लेते हैं, कुछ उसमें उनको क्रोध नहीं आता है। तो टीचर के अंदर क्रोध का अंश मात्र नहीं होना चाहिए, उनके पास नम्रता होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, नियम मर्यादाओं पर हम स्वयं भी चले और वो भी चले। पर आजकल होता क्या है कि टीचर जो कहते हैं सो करते नहीं है, और दूसरों को जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। कारण जो कहते हैं वो हम करें तो दूसरे भी उनको आप जो कहोगे सो करेंगे। तो पहले टीचर्स को हर प्रकार से अपने को संभाल कर स्टूडेंट को बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बन जाएंगे। पहले जमाने में टीचर को आचार्य कहा जाता था, आचार्य का अर्थ होता है आचरण। तो जो गुरु पढ़ाती थी, आचार्य पढ़ाती थी, उनके ध्यान रहता था कि मैं अपने बच्चों को आचरण वाला बनाऊं। इस स्कूल के विद्यार्थी ऐसे आदर्शों के निकले, ऐसा आचरण करे जो दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़े।
ठीक है, ये हुआ अच्छे टीचर का गुण। अब हम देखेंगे हमारे जो टीचर भाई बहने बैठे हैं, वो भी कुछ सवाल लेके आपके पास आए हैं।
नाउ वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडिसिप्लिन इरेगुलरिटीज अमंग द पीपल इन द सोसाइटी। हाउ दिस इरेगुलरिटीज एंड इनडिसिप्लिन विल बी चेंज्ड? आई वांट टू ए ग्रेट चेंज इन दिस सोसाइटी।
जो दूसरे को सिखाने और समझाने वाला अध्यापक है, टीचर है, उसको एक माली का दर्जा दिया गया है। आपको ये मालूम होना चाहिए, पहले के जो बड़े बड़े अध्यापक थे वो स्कूल के अध्यापक को एक माली का दर्जा देते थे कि आप माली है और ये स्टूडेंट फूल है, इनको आप ऐसा खुशबूदार फूल बनाओ जिससे इनकी खुशबू दूसरों तक पहुंचे। तो जो बच्चे आजकल डिसिप्लिन में नहीं चलते हैं या आपकी बात नहीं मानते हैं, उनका कारण है कि हमारा अपना भी कुछ डिसिप्लिन, बातों को मनवाने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। एक बात है, आप किसी भी स्टूडेंट को बहुत प्यार से समझाइए तो वो मानेगा, अगर उसी को आप जोर से धमकी देकर या गुस्सा करके कुछ कहिए तो वो ना आपकी बात मानेगा ना डिसिप्लिन में चलेगा। तो दूसरे को सुधारने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा और ऐसी कुछ प्रणाली अपनानी पड़ेगी जो आपके काबू में वो आ जाए। आप देखिए, मैं मांस मछली खाती रहूं, फिल्म सिनेमा देखती रहूं और बच्चों को कहो कि ये अच्छा नहीं है, तुम कभी फिल्म नहीं देखना ना सिगरेट पीना, लेकिन वो तो छुप के देख लेता है कि टीचर तो सिगरेट पी रहा है तो मैं क्यों नहीं पीऊं। ये तो जो कह रहा है सो नहीं कर रहा है और जो नहीं कर रहा है वो मुझे कह रहा है, तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने इसके विषय में गांधी जी की बात सुनी होगी। गांधी जी के पास एक माता अपने बच्चे को लेकर गई, बहुत गुड़ खाता था, और उसने गांधी जी को कहा कि बापू जी, आप मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, इसका गुड़ खाना बंद करा दीजिए। तो बापू जी ने क्या कहा कि 8 दिन के बाद आप लाना। तो वो चली गई, 8 दिन के बाद फिर आई तो उन्होंने बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेर कर सिर्फ इतना ही कहा कि बच्चा, गुड़ खाना इतना अच्छा नहीं है, तुम आज से गुड़ मत खाओ। और उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया कि उसकी माँ जब उसको गुड़ देने लगी तो उसने मना किया कि नहीं, मुझे बापूजी ने मना किया है। तब उसकी माँ ने बापूजी से पूछा, क्या आपके पास क्या ऐसी चीज है जो आपने 8 दिन के पहले नहीं बताई और बाद में बताई और उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि मैं देती हूँ तो अभी नहीं खाता है। तो बापूजी ने क्या कहा कि 8 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, फिर इसको बताया तो इसके जीवन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। ठीक इसी प्रकार अगर हम बच्चे से जो आशा रखते हैं कि मधुर बने, अच्छा बने, गुणवान बने, हम पहले वो उनके लिए करें तो वो आपसे वो बातें सीखेगा, और हम कुछ और करें और उसको कहें तुम ये करो तो वो ये कहेगा कि ये क्या कर रहे हैं, मैं पहले इनको देखूं। आजकल सब बच्चे गुण को मानते हैं, कर्मों को मानते हैं, प्रैक्टिकल बात को मानते हैं, थ्योरी को नहीं मानते हैं।
तो आप कुछ जो बनिए तो फिर दूसरे को बोलिए तब तो फिर उसका प्रभाव
में चलेंगे तो वो अपने आप चलेगा।
बिल्कुल दीदी,
इतना आध्यात्मिक उपाय हमारे विद्यालय में बच्चे के मन शरीर परिवेश का चेंज करे।
आप देखिए, आध्यात्मिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और वो बच्चे को तब असर करेगी जब उसको आध्यात्मिकता का संग देंगे। और 15 साल से 18 साल की आयु ऐसी होती है कि जिधर आप बच्चे को मोल्ड कर सकेंगे उधर वो मोल्ड हो जाएगा। अगर आपने बच्चे को केयर नहीं किया, चाहे शिक्षक ने चाहे माता पिता ने, तो बच्चा संग दोष में चला जाएगा, खराब संग में। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि खराब संग का प्रभाव बच्चों पर बहुत जल्दी पड़ता है बजाय अच्छे संग का। तो माँ बाप और शिक्षक सबको ये देखना पड़ेगा कि इसको अच्छा संग या आध्यात्मिक शिक्षा कौन से स्कूल में प्राप्त होगी। मैं उस स्कूल में इसको एक घंटे के लिए अवश्य भर्ती कराऊं। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा विद्यालय है जहाँ बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु से देना शुरू कर देती है। तो जब इस प्रकार रास्ते पर बच्चा आ जाएगा और सही ढंग से सही संग से एक घंटा भी वो जीवन का बिताएगा तो वो अपने 23 घंटे को कंट्रोल करेगा और बुरे रास्ते पर नहीं जा सकता है।
दीदी, आप एक चीज पूछना चाहेंगे कि जैसे बच्चा छोटा होता है, 12-15 साल का बच्चा भी हो, अगर इस रास्ता में वो जाता है लेकिन उसका संग साथी जो है वो लोग इस रास्ता को नहीं समझते हैं तो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, हमने देखा है ये चीज, तो वो बच्चा कैसे इसको हैंडल करे?
लेकिन वो अगर बच्चा स्ट्रांग है और पावरफुल है, उसने ठीक रीति से इसको समझ लिया है, तो 100 उसके साथी भी उसको बदलने की कोशिश करेंगे, वो नहीं बदलेगा, उनको बदलाने की कोशिश करेगा। क्योंकि स्ट्रांगली वो ये समझ लेगा कि रियल ओरिजिनल में मैं क्या हूं, जो उसको मालूम नहीं है। वो तो सिर्फ अपने शारीरिक बातों को जानता है, उल्टा सीधा खाना पीना रहना सिनेमा देखना इसको जानता है, उसको पता ही नहीं है। तो वो बच्चा क्या करेगा कि उसकी उन बातों में नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे आज नहीं तो कल ये प्रयास करेगा कि मैं अपने दोस्त को बदला दूं। ऐसे बहुत हैं जिन्होंने अपने संग से पहले पहले उनको बहुत मोल्ड करने की कोशिश करती हैं अपने संग में ले जाने की, लेकिन वो नहीं जाता है तो उसके संग में खराब संग वाले आ जाते हैं। वो चाहे तो उसको बदला लेगा, पर उसके दिमाग में पहले स्वयं परिवर्तन अच्छी तरह से आना चाहिए कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है।
आई एम टेलिंग ऑफ वन बॉय हुज फादर इज ए ड्रंकर्ड, मदर इज इलिटरेट एंड सन इज नॉट रेगुलर इन द स्कूल, हाउ कैन ही बी इम्प्रूव्ड?
आध्यात्मिक स्कूल ऐसा होता है जो बहुत बड़े बड़े शराबी कबाबी को भी बदल देता है, क्योंकि ये आध्यात्मिकता या प्रभु के प्रेम का एक रस है, नशा है। जब वो इस नशे में आ जाएगा और परमात्मिक आनंद की अनुभूति करेगा तो वो नशा उसके लिए फीका हो जाएगा।
बच्चा कैसे आएगा?
वो तो माता पिता उसको गाइड करेंगे ना, रास्ता कर
माता पिता मैंने गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जैसे शराबी आदमी है जो बीवी को पीटता है, बच्चा को पीटता है, वो आदमी क्या बच्चा को लेके आएगा? वो तो लेके नहीं आएगा। वहाँ पर टीचर की भूमिका क्या है?
ऐसा है कि वो हर टाइम तो नहीं पीटता है मारता है, जिस टाइम पर उसकी स्थिति ठीक रहे, 24 घंटे तो ऐसा नहीं करता है ना, जिस टाइम उसकी स्थिति ठीक रहे उस टाइम टीचर को ध्यान देना चाहिए क्या मैं इसे दूसरी लाइन में ले जाऊं। और जहां पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईश्वर के विषय में पढ़ाई पढ़ाई जाती है, शक्ति मिलती है, कुछ एनर्जी मिलती है अंदर की, उस तरफ ले जाऊं। क्योंकि उनको बच्चों को ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो अगर नहीं पीता है तो अभी मर जाता है। और अच्छे लोग जो होते हैं अच्छी चीज ग्रहण नहीं करते हैं तो उनके लिए मरने के बराबर होता है। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि ये पीता है कोई बात नहीं है, पर जिस टाइम इसकी पोजीशन ठीक है उस टाइम पे मैं प्रयास करूं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टीचर को भी करना पड़ेगा, माता पिता को भी करना पड़ेगा, माता पिता भी उसके शिक्षक है, उनको वो तंग करता है तो तंग से मुक्ति कैसे मिले। तो दोनों को मेहनत करके उनको धीरे 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 प्रयास करना चाहिए। जब पत्थर पर पानी पड़ता रहता है धीरे 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 धीरे, रस्सी पड़ती है, पानी पड़ती है, तो उसमें भी गड्ढा हो जाता है। तो मनुष्य का जीवन अगर उसका भाग्य परिवर्तनशील होगा और आप मेहनत और पुरुषार्थ करते रहेंगे तो जरूर बदल जाएगा।
जैसे दीदी ने कहा कि माता पिता जो होते हैं बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं, आजकल हमारी भागदौड़ की जिंदगी में माता पिता के पास समय का संपूर्ण अभाव है। माँ सर्विस के लिए निकल जाती है, पापा अपने काम के लिए निकल जाते हैं, उस समय वो छोटा सा बच्चा वो आया के पास पला बड़ा है, आया के जो संस्कार है वो बच्चे में आ जाते हैं। फिर जब वो स्कूल आता है, बच्चों के साथ मिलता है, तो देखता है कि दूसरे के बच्चे के माता पिता उसको आ रहे, उसको लेके जा रहे, तो उसमें वो कंपैरेटिव की जो भावना होती है वो बच्चे में हीन हो जाती है। वो अपने आप कंपेयर कर लेता है कि देखिए उसके माता पिता उसको आते हैं, समय देते हैं, मेरे माता पिता के पास, मेरे पास समय नहीं है। तो उसमें एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए, वो टीचर बच्चे को किस तरह समझाए? वो तो उसके मन को टटोलेंगे पहले ना, तो उस टीचर को किस कदर जाके उस बच्चे के वो जो हीन भावना को उसके मन से निकालना।
ज्यादा रोल माता पिता का है, टीचर का भी है, परंतु आज आपको मालूम होगा स्कूल की शिक्षाएं सिर्फ किताबों तक है। आप पोस्ट पोजीशन मिल जाए, किताबें पढ़ ले, यहां तक रह गई है, लेकिन कैसे विद्यार्थी को आदर्श बनाए वो बात बहुत ऊंची है, वो तक नहीं है। आप पोस्ट पोजीशन मिल गया, किताबें पढ़ ली, फिर किताबें एक तरफ रख देती है। माँ बाप कितना डोनेशन दे देके स्कूल में बच्चों को भर्ती करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जब माता पिता इतना खर्चा करके बच्चों पर मेहनत करती है तो माता पिता को ये भी चाहिए कि मेरे बच्चों को आया क्यों पाले, मैं माँ किस लिए बनी हूं, मैंने माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो माँ का कर्तव्य बच्चों को पालने के लिए, और माँ बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती है सिर्फ पैसा कमाने में, पैसा कमाने में माँ भी बाप लगी रहती है, तो उनको माता पिता का असली प्यार नहीं मिल पाता है, इसलिए उनको बदलना मुश्किल होता है। फिर आप आशा रखते हो कि टीचर बदलेगा। अब परंतु आप ये सोचिए कि जो माता पिता कार्य कर सकती हैं वो एक टीचर भी नहीं कर सकता है। टीचर के पास तो 5-7 वर्ष के बाद जाता है, तब उसकी बुद्धि को माता पिता बहुत मोल्ड कर देते हैं। माता पिता को जरूरी है कि वो अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकाले, जरूरी समझ के निकाले कि मैं उनको खिलाऊं, उनको उमंग उत्साह दिलाऊं, कभी पिकनिक कराऊं, कभी घूमने ले जाऊं। हर एक व्यक्ति को उमंग उल्लास भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, मीठी वाणी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो उसके पास जब होगा तो वो उसके प्यार के बंधन में बंद करके आप जैसा चाहोगे वो बनेगा।
लेकिन अगर माँ बाप नहीं करते हैं उस जगह में एक टीचर क्या कर सकती है?
माँ बाप नहीं करते हैं तो माँ बाप की भूल है ना।
हाँ, वो तो है,
लेकिन टीचर भी चाहे तो जो काम माँ बाप नहीं कर रहे हैं वो टीचर भी इनको ये सोच ले कि मेरे बच्चे हैं, ये उनकी भावना भी ये मन में आ जाए कि मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा होता तो मैं उसके ऊपर जैसे मेहनत करती वैसे मैं मेहनत करूं। तो सेकंड मेहनत टीचर करके अनुभव करे, पर टीचर भी जब करेगी जब उसके पास इनर पावर होगी वो भी कहेगी मैं भी बिजी रहती हूँ, मैं भी अपनी सेवा में काम में बिजी हूँ, मुझे फुर्सत नहीं, अपने बच्चों को संभालूंगी या इन बच्चों को संभालूंगी। आजकल हर जगह पर अहम भावना, मेरा तेरा, स्वार्थ भावना और हर चीज में अपना देखना बस, लेकिन हर एक को अपन की दृष्टि से देखना वो बड़ी चीज है। कैसा ये मेरे हैं, परमात्मा की संतान होने के नाते से सब मेरे हैं। अगर वो टीचर ये सोच ले कि मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, माता पिता भी नहीं कर रहे हैं, तो वो टीचर आध्यात्मिक टीचर के नजदीक लाए। जैसे इस विद्यालय के अंदर जितनी टीचर है हमारी, 1500 टीचर हैं, उड़िया बहनें हैं, इंग्लिश में, हिंदी में सब भाषा सिखाती हैं, तो उन टीचर तक पहुंचा दी। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे ऐसे खराब बच्चे भी बदल जाते।
पहले के जमाने में जैसे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, वो अपनी माता अपनी दादी से भगवान की कहानियाँ सुना करती थी, पर आज वो जब अपनी माता या अपनी दादी से कहानी सुनती है तो वो उनमें दिलचस्पी नहीं देती है, वो उन्हें सिगरेट के धुएं की तरह उड़ा देती है। तो उनको किस तरह स्पिरिचुअल भावनाओं की तरह मोड़ा जाए?
अगर पहले तो आप टीवी खोल दिया, क्योंकि आपको भी टीवी देखना है, सीरियल देखना है, सिनेमा देखना है, उसको देखेंगे, फिर सोते टाइम कहेंगे कि आओ हम आपको कहानी सुनाएं। पर उनकी बुद्धि में तो वही भर गया ना, कोमल बुद्धि है। आप देखिए जीजा भाई का आपने नाम सुना है, उन्होंने शिवाजी को वीर कथा सुना सुना करके दुश्मन से लोहा लेना सिखा दिया, क्योंकि बचपन से उन्होंने उसमें संस्कार डाले। और आजकल क्या है, बचपन से माता पिता टीचर सबके घर घर में टीवी है, और टीवी एक टीवी का रोग है, सिनेमा माने पाप की माँ, और वो पहले से ही उसमें जड़ जाते हैं। जो कितना भी आप वीर कथा सुनाओ, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, उनके दिमाग में तो बुरी बातें भर गई। इसलिए आजकल आध्यात्मिक स्कूल में यहाँ पर 5 वर्ष के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, 7 साल के बच्चों को भी लाया जाता है, और ऐसे बच्चे हैं जो 3 साल की बच्ची भी इतना अच्छा चरित्र के ऊपर भाषण कर सकती है और बहुत सुंदर अपनी कला दिखा सकती है, सब सिखाया जाता है।
हम सब जानते हैं कि भगवान जो भी करते हैं सबकी भलाई के लिए होता है, तो जो बच्चों का स्मरण शक्ति कम है उसमें उसकी क्या भलाई है?
स्मरण शक्ति कम नहीं होती है, पर हो जाती है। या तो समझो उसका कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब होता है, माँ बाप नहीं चाहते इसकी स्मरण शक्ति हो। बचपन से कितने होते हैं जो इसको कहते हैं कि पागल जैसा हो जाता है, कितने की कान नहीं होती है, कितनों के गुंगा नहीं होती है। यहाँ पर एक लड़की बहन आती है अपनी इतनी बड़ी बच्ची को, ना वो कान से सुनती है और ना मुख से बोलती है। पर आजकल ऐसे स्कूल हो गए हैं जो ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। तो माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे की स्मरण शक्ति कम है, अगर है भी तो आप उसको बढ़ाइए, एक बात को 100 बार उसको याद कराइए, रटाइए, और बार बार उसको अनेक तरीके बताइए कि देखो मैं जो कह रही हूँ आधा घंटे तक आप भूलना नहीं, एक रूमाल में गांठ लगा लो, तो आपको याद रहेगा कि मुझे मम्मी ने क्या कहा। तो उसकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए तो आजकल डॉक्टर्स लोग दवाई भी देते हैं, और जब परमात्मा को वो याद करेगा तो परमात्मा भी उसको अंदर से पावर देगा, क्योंकि उसका बुद्धि जितना भी है थोड़ा है ज्यादा है, जब परमात्मा में लगेगी तो परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो वो अपनी कुछ ना कुछ शक्ति उसे देगा, जिसके आधार से जिसको कहते हैं मेडिटेशन राजयोग, उसके आधार से उसकी मेमोरी बढ़ सकती है, याददाश्त आ सकती है और आपकी बात की तरफ वॉक कर सकता है।
दीदी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त से समय निकाला कुछ और सबको दिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर भी आप निकाल के दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग भी इधर आए, कुछ नया करने की इच्छा रख के आए हैं, कुछ नया सीखने के मन रख के आए हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि अगर आप माँ बाप हैं या फिर शिक्षक हैं, कुछ ना कुछ तो आप जरूर आज सीखे होंगे, इसी को काम में लगाइए, आगे अच्छा इंसान बनिए, अपने बच्चों को भी अच्छा इंसान बनाइए। इसी के साथ यही रुकते हैं, नमस्कार।